नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं साहुवच्छायिरिये अरहन्ते वन्द्यूणसिद्धेवी जे पञ्चलोगवाले वोच्छं बन्धस्य सामित्तम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आठवीं पुस्तक जो है तृतीय खंड, बंध स्वामित्व विचय, उसमें हम पृष्ठ संख्या 24 पर आ गए हैं। यहाँ अभी प्रत्ययों की बात चल रही है। 16 प्रकृतियों संबंधी प्रश्न पूछा गया था कि ये सहेतुक होते हैं या अहेतुक होते हैं, यानी सकारण होते हैं या अकारण होते हैं, बिना कारण के होते हैं। तो बंध में कारण क्या हो सकता है, तो उसको कहते हैं प्रत्यय। तो कौन से गुणस्थान में कौन से प्रत्यय होते हैं, उसकी सामान्य बात अभी पहले चलेगी, फिर जाकर वो 16 प्रकृतियों की चर्चा करेंगे। तो कल हमने देखा था प्रत्यय चार प्रकार के होते हैं, एक मिथ्यात्व है, अविरति, कषाय और योग। उसमें मिथ्यात्व 5 प्रकार का है, याद है कौन से 5 प्रकार? एकांत, अज्ञान, विपरीत, विनय और संशय। मिथ्यात्व ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व है। अविरति 12 प्रकार की है, उसमें प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम, क्योंकि अविरति की बात यदि हम पूछेंगे संयम कौन कौन सा है, तो कहेंगे प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, पर यहाँ अविरति यानी असंयम की बात चल रही है। तो प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम, इंद्रिय असंयम में पंचेंद्रियों और मन के विषयों की अभिलाषा का त्याग नहीं होना, उसको असंयम कहते हैं। और प्राणी असंयम यानी षटकाय जीव, यानी 5 स्थावर और 1 त्रस्काय, ऐसे षटकाय जीवों की हिंसा से विरति न होना, उसको प्राणी असंयम कहते हैं। कषाय तो हमें मालूम है, 4 चौक 16, यानी 4 चौकड़ी के 16 और 9 कषाय, इस तरह से 25 तो कषाय है। और योग 15 है, उसमें से मिथ्या तो गुणस्थान में आहारक, आहारक अंगोपांग, ये आहारक मिश्र का योग नहीं होता है, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग नहीं होता है, उसको छोड़कर वहाँ कितने प्रत्यय है, कितने प्रत्ययों से बंद होता है, ये बात हमने देखी थी। तो 2 कम करना, 57 में से 2 कम किए तो 55 हो जाएगी। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व तो नहीं रहता, तो मिथ्यात्व तो संबंधी 5 कम हो गए उसमें से, तो 50 से बंद होता है। तीसरे गुणस्थान में क्या होता है, अनंतानुबंधी भी नहीं है वहाँ, और तीसरा गुणस्थान है तो वहाँ तीसरे गुणस्थान में कोई मरता नहीं है और मरकर कहीं जन्मता नहीं है, तो वहाँ वैकृत मिश्र भी नहीं है, औदारिक मिश्र भी नहीं है, कारमाण का योग भी नहीं है। तो वहाँ कितने हुए थे, 50 में से, तो कितने रहे, 46, 43 हुए थे, क्योंकि ये 3 हमने 46 तो चौथे में है, नहीं तीसरे की बात चल रही थी, 43 थे, 7 गए, 7 देखो 50 में से कितने गए, अनंतानुबंधी 4 और 2 मिश्र और 1 कारमान, 50 में से 7 गए तो 43 हो गए, चौथे वाले को ये मिश्र वाले और कारमाण वाले फिर हो जाएंगे। तो उसमें तीन और मिला देंगे तो 46 हो गए। पांचवे वाले को अप्रत्याख्यान आवरण चार घटेंगे तो 40 और क्या घटेगा, हाँ पांचवा गुणस्थान है तो वैक्रिक पहले हमने ऐड किया था उसको भी घटाएंगे और वैक्रिक को भी घटाएंगे क्योंकि पांचवा गुणस्थान देव नारकियों में नहीं है। तो ऐसे जाने पर कितने रह गए, 37 रह जाते हैं। अवदारिक मिश्र भी निकाला था, पांचवे गुणस्थान में अवदारिक मिश्र नहीं, अवदारिक तो रहेगा अवदारिक मिश्र नहीं रहेगा, तो अवदारिक मिश्र नहीं है, वैक्रिक मिश्र नहीं है, वैक्रिक का योग नहीं है, कारमान का योग नहीं है। हाँ अभी त्रस काय की अविरति निकल जाएगी, एक वो निकल जाएगी और बाकी ये भी जाएंगे। हाँ तो 37 रह जाते हैं और उसके बाद अभी छठे गुणस्थान में वो तो 11 अविरति थी पांचवे वाले के, वो भी निकल जाएंगे और क्या, हाँ चार प्रत्याख्यान आवरण चार जाएंगे, इतने जाएंगे और आहारक आहारक मिश्र वो हो गए उनके। हाँ तो 11 और चार गए और दो आ गए फिर, तो वहाँ 24 रह जाएंगे, 24 रह जाते। फिर प्रमत्त हो गए, अभी अप्रमत्त संयत के क्या नहीं होगा उसमें से, आहारक आहारक अंगोपांग नहीं, आहारक मिश्र का योग, ये अंगोपांग तो प्रकृति का नाम है और हम योग की बात कर रहे हैं। तो 24 में से दो गए उनके 22 रह जाते हैं, अपूर्व करण में भी उतने ही हो गए, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं है। नवे गुणस्थान में क्या होगा, नहीं नहीं वेद के पहले भी हमने देखा था हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा का उदय की विच्छित्ति आठवें में होती है, तो वहां वो उदय नहीं रहेगा, तो ये 6 एक साथ चले गए, तो 22 में से 6 गए तो 16 रहे। उसके बाद क्रम से जाने वाले नपुसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद, यानी 16 में से 15, फिर 14, फिर 13, उसके बाद एक एक संज्वलन, क्रोध संज्वलन जाएगा 12 हो जाएंगे, मान संज्वलन जाएगा 11 हो जाएंगे, माया संज्वलन जाएगा 10 हो जाएंगे, लोभ संज्वलन तो रहेगा वहां पर, यानी अनिवृत्तिकरण के हमने ये उदय की अपेक्षा इतने भेद किए। पहले हम जो भेद करते थे 5 भेद, तो उसमें बंद की अपेक्षा करते थे, पहला वो वेद वाला, वेद सहित वाला, फिर क्रोध वेदक काल, मान वेदक काल, ऐसे वेदक काल की अपेक्षा, यह अलग बात है। तो यहाँ हमने 7 उसके भेद किए। अब 10वें गुणस्थान में क्या पोजीशन होगी, लोभ तो रहेगा, 10वें में है अभी, तो ये जो 9वें के अंत में जो पोजीशन थी वही रहेगी 10वें में भी, क्योंकि उसमें कुछ कम नहीं हुआ है, 10वें के अंत में जाकर लोभ चला जाएगा। हाँ तो 11वें में क्या होगा, 9 प्रत्यय रहेंगे, कौन से 9 रहेंगे, योग रहेगा अकेला ख्याल है ना, योग है 9 योग, कौन कौन से 9 है, हाँ मन के 4, वचन के 4 और औदारिक का योग, ये 9 योग ही रहेंगे, बंध तो उनसे ही रहेगा। तो कौन सा बंध होता है वहां पर, एक साता वेदनीय का ही बंध होता है, 11वें के भी और 12वें को भी। 13वें में क्या पोजीशन है, 13वें में भी बंध तो साता वेदनीय का है, परंतु यहां हमने 9 योग लिखे कहे थे, तो 4 मन के और 4 वचन के थे, तो उसमें जो मृषा मनोयोग और उभय मनोयोग वो नहीं रहेंगे, यानी 4 वचन है, वचन योग है, योग है ना, वो उस संबंधी आत्म प्रदेशों का कंपन भी है। देखो दिव्य ध्वनि खिरती है, वहां तो हम कहते वो बहुवेजनों के निमित्त से, वो तो पर निमित्त हो गया, परंतु वहां जिसकी वाणी हम कहलाते, अभी हम भी भाषा बोलते हैं, तो इसमें हमारा क्या, हम कुछ नहीं करते, पर निमित्त क्यों है, वचन योग है वहाँ पर। वहाँ तो आपका प्रश्न है, वहाँ तो सत्य ही वचन योग होना चाहिए, बाकी के तीन का हम, बाकी का एक होता है, कौन सा अनुभव, वो भी ऐसा क्यों कहा, केवली के अनुभव वचन योग क्यों कहते हैं? तो जब दिव्य ध्वनि खिरती है, हाँ, अनक्षरी है, तो वहाँ तो अनुभव कहा उसको। अब जो श्रोता जब ग्रहण करता है, कानों पर पड़ती है, और वो अपने अपने अपेक्षा से, अपनी अपनी योग्यता से समझ लेते हैं, तब उसके वो सत्य हो जाता है, इसलिए दोनों कहे उसको। ये प्रश्न उठाकर यहाँ चर्चा भी कहते, उसको अनुभव क्यों कहते हैं, केवल ज्ञानी के होने पर उसके वचन को ऐसा क्यों कहते हैं? और वहाँ जो मनोयोग कहा है, वो भी दो प्रकार का, हमारे भी मनोयोग पूर्वक वचन योग होते, इसलिए उनके भी ऐसा कह देते हैं, उपचार से है, केवलियों का मनोयोग उपचार से, क्योंकि इंद्रिय और मन संबंधी का उनके उससे, उसके निमित्त से उनका कुछ ज्ञान वगैरह नहीं चलता है, फिर भी उपचार से, और वहाँ तो द्रव्य मन की रचना बनी पड़ी है, इसलिए उसको कहते हैं, इतनी बात है। तो उनमें कौन से प्रत्यय है, तो मनोयोग दो, वचन योग दो, औदारिक का योग है उनके। अब केवली समुद्घात की अपेक्षा औदारिक मिश्र और कारमान भी रहेंगे, इसलिए वहाँ सात कहे योग। इस तरह से हमने सभी गुणस्थान में बंध के कारणों की चर्चा, यानी प्रत्ययों की चर्चा की। अच्छा, चौदहवें गुणस्थान में कितने हैं प्रत्यय? हाँ, वहाँ प्रत्यय भी नहीं है और बंध भी नहीं है, बंध के हेतु ही नहीं है, बंध भी नहीं है। अभी हम ये गाथाएं पढ़ने जा रहे हैं ऊपर से, यही इसी विषय संबंधी जो गाथा है वो ऊपर दी है, उसको हम पढ़ेंगे। चदुपच्चई गो बंधो पढ़ में उवरिमतिये ति पच्चयो मिस्सग विदियो उवरिम दुगम च देश गदे सम्मी उवरिल्ल पंचये पुण दुपच्चो जोग पच्चो तिन्नम सामन्न पच्चया खलु अठन्नम होंतिकम मानम। इसका पहले अर्थ देखते हैं, हाँ, 20-21 का एक साथ है ना अर्थ। चदु पच्चई गो बंदो, पच्चई यानी प्रत्यय, प्रथम गुणस्थान में चार प्रत्ययों से बंद होता है, यहाँ मूल प्रत्ययों की बात है। कौन से चार हो गए आप इनांग भाई? चार प्रत्ययों से मिथ्यात्व गुणस्थान में बंद होता है, जिसको हमने मूल प्रत्यय कहा था, हाँ, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चार मूल प्रत्यय है। तो चदु पच्चई गो बंदो, पढ़मे यानी पहले गुणस्थान में, उसके बाद उवरिमतिये ऊपर के तीन में, ऊपर के तीन गुणस्थान में, दूसरे तीसरे और चौथे में, ती पच्चयो यानी मिथ्यात्व को छोड़कर तीन प्रत्यय है, कौन से, अविरति है, कषाय है और योग है, दूसरे तीसरे और चौथे में लिखा ना, इससे ऊपर तीन गुणस्थानों में मिथ्यात्व को छोड़कर शेष तीन प्रत्यय संयुक्त बंध होता है। संयम के स पर बिंदी लगाना, संयम के एक देश रूप देश संयत गुणस्थान में, संयत का एक देश रूप यानी वहाँ एक देश यानी पार्शल संयम है। तो पांचवें गुणस्थान में दूसरा असंयम प्रत्यय, हमने प्रत्यय चार देखे, पहला है मिथ्या, तो दूसरा है असंयम या अविरति, तो वो जो दूसरा प्रत्यय है उसमें से वो दूसरा असंयम प्रत्यय मिश्र रूप है, अविरति वाला जो प्रत्यय है वो मिश्र रूप है, मिश्र रूप है ने विरति भी है और अविरति भी है, उसको मिश्र कहते हैं, उसका नाम संयम असंयम भी कहते हैं ना, संयम भी है और असंयम भी है। त्रस की हिंसा संबंधी विचार करेंगे तो वो संयम है, और एकेंद्रियों की हिंसा त्याग नहीं सकते तो उतना उनमें असंयम भी है, इसलिए दूसरा अविरति वाला जो प्रत्यय है वो मिश्र है, विरत और अविरत दोनों साथ है वहां पर, उसको मिश्र कहा। तथा उपरितन कषाय व योग, ये दोनों प्रत्ययों से बंध होता है, उपरी में ने इसके ऊपर, पांचवे में मिथ्या तो नहीं है, अविरति वाला मिश्र है और कषाय और योग से बंध होता है, इसके ऊपर पांच गुणस्थानों में, हाँ कषाय और योग इन दो प्रत्ययों के निमित्त से बंध होता है, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें से हमने तो एक्चुअल संख्या देखी थी, यहाँ मूल प्रत्ययों से बात चल रही है, इसलिए कषाय है और योग है इतना ही बता दिया। पुनः उपशम मोहादि, उपशांत मोहादि तीन गुणस्थानों में केवल योग निमित्तक बंध होता है, अकेला योग है, कषाय है ही नहीं 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में, तो उसको हम जो कहते हैं सांप्रायिक आश्रव है वो 10वें तक है, और बाद में जो होता है वो सांप्राय से नहीं होता है, वो अकेले योग से होता है। इस प्रकार गुणस्थान क्रम से 8 कर्मों के ये सामान्य प्रत्यय है। आठ कर्मों के प्रत्यय ने 8 कर्मों के बंध के हेतु ये है, 8 कर्मों के बंधने के हेतु भी बताए नहीं हम। अब 22 नंबर की गाथा हम पढ़ेंगे। पचवन्ना इरवन्ना तिदाल छादाल सत्तती साय चदुवी सदु बावी सा सोलस ए गुण जावणव सत्तम। देखो इसमें सारी संख्याएं बता दी, पणवन्ना 55, इरवन्ना यानी वो 50 ना 0, तिदाल यानी 43, छादाल यानी 46। ये ऐसा वाला कोई शब्द सुना था? हाँ वेरी गुड। फिनांग कभी कभी आए और उत्तर बराबर दिया। बादल यानी 42, 2 से 42 संख्या से शुरू होता है, ये तिदाल यानी 43, यहाँ तो 43 और 46 तो संख्या इटसेल्फ है, हमने देखा ना पनट्टी बादाल इकट्ठी वगैरह, वो स्टार्टिंग का उसका 42 संख्या से शुरू होकर 10 संख्या वाली, 10 डिजिट वाली संख्या है, उसको बादाल कहा है, शुरू में कौन सी संख्या है उसका नाम उस संख्या को दे दिया। वैसे यहाँ तिदाल यानी 43, छादाल यानी 46, सत्ततीसा 37, चदुबीस यानी 24। हमेशा अंक जब पढ़ते हैं तो बाद वाला अंक पहले, जैसे 18 है तो 8+1 ऐसा कहेंगे, 24 पहले 4 फिर 20, 24, वैसे यानी चदुबीस कहा। फिर 22, दो बाविसा यानी 2 बार 22, कहाँ पर लिखा था 2 बार? 7वें और 8वें, वेरी गुड। उसके बाद 16, 9वें के स्टार्टिंग में 16 हमने देखे थे, क्योंकि 6-9 कषाय एक साथ चले गए थे और फिर बाद में उसमें से एक 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 कम हुआ था, तो बाद में क्या एगुण जावण अव सत्तम, एक 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 कम तक करते 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 जब तक 9 रह जाए, नव सत्तम 9 और 7, जावणव यहाँ तक लेना, फिर सत्तम, सत्तम ये 13वें के लिए, 9वें और 10वें में 16 से एक एक कमती करते हुए 15 है, फिर 14 है, 13, 12, 11, 10, फिर 9, 11वें और 12वें में 9 रहे और 13वें में 7 रह गए। पहले ऐसे सूत्रों और छोटी गाथाओं के द्वारा पूरा याद रखते थे। अब 11वें और 12वें में 9 है, 13वें में 7 है, योग कितने हैं? योग की अपेक्षा है ना, 11वें 12वें में 9 योग है और 13वें वाले को 7 है, अभी हमने देखा दो मन के दो वचन के औदारिक औदारिक मिश्र और कर्मण, बराबर है। देखो अभी हम गाथा के आगे बढ़ते हैं। नहीं, बहुत अच्छा दिया। देखो नीचे से अर्थ फिर पढ़ते हैं। 55 हाँ, ये यहाँ जो उन्होंने लिखे ये गुणस्थानों की संख्या है हमारे सहूलियत के लिए। 55, 50 उसके ऊपर दो लिखा ना, यानी दूसरे गुणस्थान में 50, तीसरे में 43, चौथे में 40, पांचवे में 37, छठे में 24, दो बार 22 यानी सातवें और आठवें में, नौवे में 16 और आगे 9 तक एक एक कम। अभी ऊपर हमने पढ़ा था एगुण जाव नव, अर्थात 15, 14, 13, 12, 11 ये तो सब कहाँ कहाँ के बताए उन्होंने। हाँ, नौवे के अंत तक, 10 भी नौवे के अंत तक, और फिर 10 जो बताए हैं वो दसवें के, दसवें में भी वही पोजीशन है क्योंकि लोभ वहाँ है। फिर 11वें 12वें के लिए 9 और 9 और 13वें में 7। इस प्रकार क्रम से मिथ्यात्वादी अपूर्वकरण तक 8 गुणस्थानों में, अपूर्वकरण के 7 भागों में तथा सूक्ष्म सांप्रायादि सहयोगी केवली तक शेष गुणस्थानों में बंध प्रत्ययों की संख्या है। प्रत्येक गुणस्थानों में तो एक एक ही बार जो कुछ है, 9वें में ही इतना डिफरेंस पड़ता है, उसके 7 भाग कर दिए तो वहाँ प्रत्ययों की अपेक्षा से वेरिएशन जो कुछ है वो अंतर है। अब एक समय में होने वाले उत्तरोत्तर प्रत्ययों को 14 जीव समासों में कहते हैं। जीव समास यानी गुणस्थान, क्या कहते हैं? उत्तर प्रत्यय। पहले तो कौन से बता दिए? मूल प्रत्यय, 4 होते हैं इतना ही कह दिया। मिथ्या तो गुणस्थान में 4 होते हैं, अब यह उत्तर प्रत्ययों की बात है। और उसमें से वे भी प्रत्यय अभी आप जब पढ़ेंगे तभी ख्याल में आएगा कैसे होते, जघन्य से उत्कृष्ट से, क्योंकि योग कितने होते अभी हमने देखा मिथ्या तो गुणस्थान में, नाना जीवों की अपेक्षा नाना काल में योग कितने होते हैं? 13 होते हैं, परंतु एक जीव के एक समय में एक ही योग होगा। मिथ्या तो गुणस्थान में अभी हमने देखा था 16 कषाय देखे थे, परंतु उदय रूप कषाय 4 क्रोध 4 मान या 4 माया इस तरह से होंगे, इस तरह से उनकी संख्या भी देखनी। उत्तर प्रत्यय, उत्तरोत्तर प्रत्यय कहा ना, वह इस प्रकार है। उनमें मिथ्या दृष्टि के जघन्य से 10 प्रत्यय होते हैं। 10 प्रत्यय कौन से? 5 मिथ्यात्व में से 1, एट ए टाइम की बात चल रही है अभी, उसके भंग तो बाद में देखेंगे। पहले मिथ्या दृष्टि के प्रत्यय 10 होते हैं, यानी एक प्रकार का मिथ्यात्व। उसके बाद एक इंद्रिय से जघन्य से एक काय की विराधना करता है, इस प्रकार 2 असंयम प्रत्यय। इंद्रिय असंयम में से 1 और प्राणी असंयम में से 1, ये 2 असंयम हुए। मिथ्यात्व में से 1, असंयम के 2। अनंतानुबंधी चतुष्टय का विसंयोजन करके मिथ्यात्व को प्राप्त हुए जीव के आवली मात्र काल तक अनंतानुबंधी चतुष्टय का उदय न रहने से 12 कषायों में 3 कषाय प्रत्यय। ये स्पेशल केस लिया, कौन से? जिसने सम्यक्त्व प्राप्त किया था और अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने के पश्चात ऐसे जो मिथ्यात्व में आया, तो मिथ्यात्व में आया तो उसके जो अनंतानुबंधी वो विसंयोजित हुआ था, तो उसके सत्ता में अभी सत्ता में तो रहेगा, परंतु उदय में अनंतानुबंधी नहीं आएगा, क्योंकि उदय में कब आएगा? अभी नया बंध रहा है उसी समय से, जिस समय मिथ्यात्व में आया उसी समय से नया बंध अनंतानुबंधी का चालू हो गया। सत्ता में तो अनंतानुबंधी है, परंतु हमने देखा था पहले बंध होने के बाद वो बंधावली और बाद में और एक आवली, सत्ता में नया बंध की अपेक्षा मैंने सत्ता में कहा। नीचे आया मिथ्यात्व में आते ही उसी समय उसको नया बंध भी होगा अनंतानुबंधी का। तो अनंतानुबंधी है परंतु वो उदय में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी आबादा होगी बंधा के बाद, बंधावली और एक आवली छोड़कर उतने काल के बाद वो जल्दी जैसे जल्दी उदय में आएगी। तो तब तक उसको उदय नहीं है, उसके कारण से यहाँ नया बंध नहीं है। कहने का कारण क्या है, जो उदय रूप होगी वो तो ये निमित्त होगी ना बंध में, तो उस स्पेशल केस की बात चल रही है। बाकी मिथ्या तो गुणस्थान में अनंतानुबंधी तो होते ही है, तो वहाँ हम चार प्रकार के क्रोध या चार प्रकार के मान कहेंगे। अब यहाँ तीन प्रकार के ही लिए, तीन कषाय लिए, तो 12 कषाय में से 3 कषाय प्रत्यय। कौन से 12 कषाय? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानारण, संज्वलन, चार्त्रिक 12 है, परंतु उसमें उदय रूप 3 ही हो गए। तो वहां बंध किस कारण से होगा? 3 प्रकार के क्रोध से होगा। तो बंध होगा सब प्रकार का। अब यहां बंध देखो, अनंतानुबंधी के उदय विसंयोजना करके मिथ्यात्व में आया है, उसमें बंध में निमित्त कौन है? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन का क्रोध, बराबर, और बांध रहा है कितने? 16। बंध में कारणभूत है 3 और यहां बांध रहा है 16 को। जब अनंतानुबंधी का भी उदय शुरू हो जाएगा तो 4 का उदय और बांध रहा है 16। 3 वेदों में 1, अभी यहां 3 कषाय, 1 वेद, 1 वेद का उदय है, अभी एक जीव के एक कोई समय में एक ही वेद होगा। हास्यरति और अरति शोक इन 2 युगलों में से 1 युगल, तथा 10 योगों में 1 योग, इस प्रकार ये सभी जघन्य से 10 प्रत्यय होते हैं। देखो हमने देखा था, उदय के कूट देखे थे, वही मुझे याद आया अभी। मिथ्या तो गुणस्थान में उदय की पोजीशन क्या है? मोनिय की बात है। एक है मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी सहित की बात अभी कर रहे हैं। 4 क्रोध, 4 मान, 4 माया या 4 लोभ, ऑप्शंस कहाँ हैं? ये 4-4 में, 3 वेद में से 1 वेद, ये 3 वेद, हास्य रति होगा या शोक अरति होगा। अब भय जुगुप्सा में से क्या होगा? किसी को दोनों हो गए, किसी को अकेला भय होगा, किसी को अकेले जुगुप्सा होगी, किसी को कुछ नहीं होगा। तो अभी वहां पर कितने हैं पोजीशन, वो प्रत्येक कितने हैं, ऐसा हम काउंट करेंगे। 1 मिथ्यात्व, 4 कषाय, 5 हुए, 1 वेद, 6 हुए और 1 युगल, 6 2 8 हुए। 8 में ये 2 मिलाओ तो 10 हो जाएंगे, किसी के 1 होगा तो 9 हो गए और किसी के 0 होगा तो 8 हो गए। तो वहां ये 10, 9 या 8 ऐसी पोजीशन होगी। अब यहां जो है वो अलग पद्धति से, वो तो ये तो केवल मोहनीय के उदय कूट है, और इसमें से भी मोहनीय में मिनिमम लिया कौन सा? अनंतानुबंधी का विसंयोजन वाला जीव लिया है। तो यहां हम 4 के बदले 3 ही गिनेंगे, तो 1 मिथ्यात्व, 3 कषाय, 4 हुए, 1 वेद, 5 हुए, 2 युगल, 7 हो गए। ये मिनिमम अगर लेना है तो 7 होते, मिनिमम लेना है तो, या 7 के बदले यहाँ 2 लेते तो वो भी और बढ़ जाएगी। अब यहाँ अविरति संबंधी 2 असंयम लिए और कषाय तो अभी हमने देखे थे, मिथ्या तो और कषाय देखे अभी हमने, और योग कितना होगा? 1 होगा। सबको पकड़ कर की बात है यहाँ पर, प्रत्ययों की टोटल बता रहे। देखो इसको फिर पढ़ते हैं, मिथ्या तो में से 1, असंयम 2, और जो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके आया है वो आवली काल तक, यानी बंद के बाद उदीर्ण होकर भी वहाँ जो उदय शुरू होगा तो आवली में मिनिमम आवली में तो शुरू हो सकता है, परंतु तो आवली काल तक उसका उदय नहीं है। इसलिए तीन कषाय लिए वेद में से एक, हास्य रति युगल में से कोई एक युगल, दस योगों में एक योग। इस प्रकार ये सभी जगन्य से दस प्रत्यय होते हैं। ये अलग अलग यहाँ वेरिएशंस बता रहे हैं कौन कौन से हो सकते हैं। अभी विसंयोजन करके आया हुआ है मेरे ख्याल से, इसलिए वो पर्याप्त होना चाहिए ना। तो मिश्र वाले निकाल दिए उन्होंने, 13 में से 3 गए, 2 मिश्र और 1 कारमान गया, इसलिए 10 योग में से 1 लिया। ये अलग अलग अभी पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं, अभी दूसरी बताएंगे कौन सी। पहले हमने कौन से देखिए, हमने पहले 15 योग देखे थे। मिथ्यात्व में वाले को आहार काहारक मिश्र नहीं रहता, रहे 13। 13 में से औदारिक मिश्र, वैकरिक मिश्र और कारमान को बाद किया तो 10 रह गए। तो 10 में से एट अ टाइम कोई एक ही योग होगा, उसकी बात है। दस में से एक, हाँ। देखो ऐसा हम ध्यान में रखें ना, एक कोई मिथ्यात्व, अभी कषाय को अलग रखो, दो असंयम, एक योग, ये 4 हो गए। अब कषाय में से देखना है तो यहाँ अनंतानुबंधी का विसंयोजन वाले के लिए एक आवली काल तक 3 कषाय, एक वेद, फिर कषाय योग को हमने पहले देख लिया। कषाय कितने हैं उसकी बात है, 3 कषाय, एक वेद, 4 हो गए ना। हास्य रति युगल वहाँ वो भैजुगुप्त वाले को भी नहीं लिया, इसलिए इसकी टोटल होती है 10। फिर से एक मिथ्यात्व, 2 असंयम। अभी योग को एक पहले ले लो, योग हो गए ना। अभी 3 कषाय, फिर हास्य रति युगल, 5 हो गए, एक वेद, 6 हो गए, और पहले हमने 4 देखे थे, 10 हो गए मिनिमम। यहाँ हमने भैजुगुप्सा को छोड़ा है और अनंतानुबंधी को भी छोड़ा है, ख्याल आता है। अब आगे देखेंगे, हाँ, किसी एक उसमें से किसी एक इंद्रियों के विषय में वो अभी वो उलझा हुआ है, उसका अभिलाषी। और 6 काय में से एक ही की काय का लिया, कैसे ऐसा कोई हो सकता है, 6 के 6 काय की हिंसा हो रही है उसकी। यहाँ तो हमने 1 काय वाले की हिंसा वाला लिया है, मिनिमम हमको प्रत्यय लेने थे, मैक्सिमम लेने तो 6 लेने पड़ेगी, एक कषाय भी बढ़ जाएगा अनंतानुबंधी का, और भैजुगुप्सा को छोड़ा है उसको भी पकड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मैक्सिमम संख्या हो जाएगी। भैजुगुप्सा को भी लेंगे, अनंतानुबंधी को भी लेंगे, और ये 6 काय की हिंसा वाला लेंगे। इस तरह अभी देखते आगे जो बताए हूँ, 5 मिथ्यात्व में से एक, उसमें से तो एट अ टाइम एक मिथ्यात्व होगा। एक इंद्रिय से 6 कायों की विराधना करता है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस कौन से हो सकते हैं उसकी बात है। ऊपर क्या कहता किया था, जघन्य से 1 काय की विराधना कही थी, अब यहाँ 6 काय की विराधना कर रहे हैं। अतः 7 असंयम प्रत्यय, ये ख्याल में आया। ऊपर एक इंद्रिय से 1 काय की विराधना होती थी, अब यहाँ एक इंद्रिय संबंधी यानी विषय अभिलाषा और 6 काय की हिंसा है, तो 7 प्रकार का असंयम। 16 कषाय में 4 कषाय प्रत्यय, क्योंकि ऑर्डिनरी मिथ्या दृष्टि लिया हमने पहले, वो दिया था वो अनंत अनुबंधी की विसंयोजना वाला लिया था। 3 वेदों में 1, हास्य रति और अरति शोक इन 2 युगलों में से 1 युगल, भय जुगुप्सा 2, दोनों को ही लिया, ऊपर दोनों को ही नहीं लिया था। 13 योग प्रत्ययों में से 1, अब यहाँ 13 में से 1 लिया, क्योंकि वो अपर्याप्त अवस्था होगी तो औदारिक मिश्र, वैकरिक मिश्र और कार्मण भी हो सकते हैं, इसलिए 13 योग में से 1। इस प्रकार ये सभी 18 होते हैं। पहले हमने 10 देखे थे, उसमें कौन कौन से बड़े हैं? 2 के बदले 7 लिए, 5 वहां बढ़ गए, 5 असंयम बढ़ गए, क्योंकि हमने एक ही काय संबंधी देखे थे, अभी 6 काय लिए, यानी 5 काय संबंधी विराधना ली, अनंतानुबंधी 1 बढ़ गया और भय जुगुप्सा भी बढ़ गया, 8 बढ़ गए। तो 10 से ये यहाँ 18 लिखे, बीच में वेरिएशन अभी कितने भी हो सकते हैं। भय जुगुप्सा 2 के बदले 1 ही लेंगे तो अभी 1 बढ़ा दो, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, क्योंकि अकेला अनंतानुबंधी को बढ़ाना, भय जुगुप्सा को लेना ही नहीं, फिर एक एक काय संबंधी हिंसा को बढ़ाते जाना, तो इस तरह से अलग अलग हो सकते 10 से 18 तक। इस प्रकार इन जघन्य 10 और उत्कृष्ट 18 प्रत्ययों से ये कैसे समझ में आए ना, किसी के 10 है कम से कम अनंतानुबंधी के विसंयोजा और बिना भय जुगुप्सा वाला, उत्कृष्ट 18 प्रत्ययों से, यानी बीच वाले भी हो गए किसी जीव को। हमने देखा इतने सारे 6 काय की विराधना नहीं होगी, किसी के 5 की होगी, किसी को 4 की होगी, किसी को 3 की, 2 की होगी, भय जुगुप्सा का उदय किसी के होगा, किसी का नहीं होगा, किसी को 1 का उदय होगा, यानी अकेले भय का या अकेले जुगुप्सा का, इस तरह से उसमें ये अंतर पड़ेगा। तो इन प्रत्ययों से मिथ्यादृष्टि जीव विवक्षित 16, कौन से 16 है हमें याद दिलाने के लिए, 5 ज्ञानावरणादि कहा, याद है ना 16 कौन से, 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय, 4 दर्श, हाँ 4 दर्शनावरण, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र, जो पहले से 10वें तक बनती है, दूसरी भाषा में 10वें में जिसकी विच्छित्ति होती है। इन प्रकृतियों को बांधता है वो बा के ऊपर बिंदी लगाना। यहाँ तक समझ में आए तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ पीना भले याद, यू कैन नॉट रिपीट, डजंट मैटर, समझ में आया कि नहीं ये मुख्य बात है। यह प्रत्यय किसे कहना, पहले तो हमने मूल प्रत्ययों की बात की, वहां तो इतना ही बता दिया मित्र, वो चारों प्रत्ययों से बंद होता है, फिर चारों में से प्रत्येक के एट अ टाइम किस कितने हो, एक समय में एक जीव के कितने हो गए उसकी बात बताई उन्होंने, तो कम से कम 10 से और अधिक से अधिक 18 से बंद होगा। आगे बढ़ते भी, एक इंद्रिय से एक काय की विराधना करता है, इस प्रकार 2 असंयम प्रत्यय, 16 कषायों में 4 कषाय प्रत्यय, 3 वेदों में 1 वेद प्रत्यय, हास्य रति और अरति शोक इन 2 युगलों में से 1 युगल, 13 योगों में से 1 योग, इस प्रकार। अब सासादन की बात कर रहे हैं, सासादन सम्यक दृष्टि के जघन्य से 10 और उत्कृष्ट से 17 प्रत्यय होते हैं। देखो यहाँ अनंतानुबंधी का विसंयोजन वाला तो ले ही नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? बहुत अच्छी बात है, अश्विन भाई कहते हैं दूसरा गुणस्थान किसके होता है, उपशम सम्यक्त्व के, जो प्रथम उपशम सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी के उदय से ही तो दूसरा गुणस्थान आया है, जहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं है और अनंतानुबंधी का उदय है, और जो विसंयोजन वाला मिथ्यात्व में चला जाता है तो विसंयोजन वाला तो दूसरे में जा ही नहीं सकता है न? तो यहाँ इसलिए ये कहा कि ये तो दूसरे गुणस्थान की बात है, तो उसमें मिथ्यात्व का तो उदय है नहीं है, मूल प्रत्यय 3 ही है, ये उदय की कुट की बात इसकी अगर जाननी है तो अभी यहाँ जो अनंतानुबंधी का उदय ही नहीं है, पहले हमने उदय के कूट देखा था ना, ये अकेले मोहनी की बात है, उसमें वो अविरति और योग वो नहीं लिया था, तो तीन कषाय में से किसी एक का उदय होगा, ये कषाय मिलाने के लिए। और यहाँ मिथ्यात्व का उदय मिट गया है, अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सॉरी चार चार मैंने में मिथ्यात्व के बदले ऊपर ही मिटा दिया, चार चार अनंत अनुबंधी का उदय है और मिथ्यात्व का उदय नहीं है। तो मिथ्यात्व वाला प्रत्यय ही नहीं है तो उसकी बात नहीं है। असंयम में भी मिनिमम वाले लिया तो दो वाला लिया असंयम, कषाय में कितने लेने हैं, चार, एक वेद, ये युगल दो। अभी मिनिमम लेना है तो भयजुगुप्सा को पहले नहीं लेंगे, बाद में मैक्सिमम वाली संख्या में ले लेंगे। तो इसमें चार, एक, पांच और दो, सात कषाय लिए, असंयम दो लिए थे, सात कषाय लिए और एक योग, इससे से इसकी भी संख्या दस हो जाएगी, कम से कम प्रत्येक कम से कम दस हो जाएगी। अभी हम सोचते हैं अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो ये जो दो असंयम के बदले हमने कितने, सात असंयम हो सकेंगे यहाँ, और यहाँ चार, एक, पांच, दो, सात गिने थे, उसमें भय जुगुप्सा दोनों मिला है तो नौ हो जाएंगे। योग तो एट अ टाइम एक ही रहेगा। अब यहाँ देखते कितने लिखे हैं, यहाँ लिखा ना, इस प्रकार सासाधन समय दृष्टि जघन्य से दस और उत्कृष्ट से सत्रह प्रत्यय होते हैं। यहाँ सत्रह के वहां ब्रैकेट में भी अंकों में लिख देना सत्रह, क्योंकि उसके मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता। ख्याल है? देखो ये पुराने कर्मों के उदय की बात है, जीव के भाव भी होते, परंतु यहाँ तो समझाया उनके उदय की अपेक्षा से समझाया उसको। हाँ यहाँ सत्रह लिखा है, वहाँ ऊपर उदया भावादो लिखा था ना, उपकसे ने सत्रह पच्चाय होते मिच्छत्त उदया भावादो, ठीक है, ऊपर भी वहीं पर लिखा था उन्होंने जो कुछ है। चलो इस प्रकार क्रम से इन जघन्य दस और उत्कृष्ट सत्रह प्रत्ययों से सासाधन समय दृष्टि विवक्षित पांच ज्ञानावरणादि सोलह प्रकृतियों को बांधता है। यह पूछी बात सोलह की, इसलिए वो सोलह प्रकृतियों को बांधता है ऐसा लिखा, परंतु वहां बंध योग्य प्रकृतियां तो बहुत सारी है, तो उसका बंध होगा वहां पर, अकेले सोलह ही बनती है इसका बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिथ्यात्व तो संबंधी जो सोलह के बिंदु विच्छित्ति छोड़ी है उसको छोड़कर सासाधन वाले तो बाकी सब कर्मों का बंध करेंगे। यहाँ यथा योग्य, यथा योग्य क्यों कहा, जैसे आहारक का नहीं होगा, तीर्थंकर का नहीं होगा, परंतु यहाँ बंधने योग्य जितनी है दूसरे गुणस्थान के लिए उन सभी का बंध यहाँ इन प्रत्ययों से होगा। यहाँ बंधने के कारण कौन से है, तो ये दस से लेकर सत्रह तक उत्तर प्रत्ययों की अपेक्षा से, मूल प्रत्ययों में मिथ्यात्व को छोड़कर अन्य तीन, क्रम से हम पढ़ते जाएंगे तो क्लियर होगा। चलो अब आगे, एक इंद्रिय से एक काय की विराधना करता है। अब अगली बात बता रहे हैं, इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय अनंतानुबंधी चतुष्टय को छोड़कर शेष बारह कषायों में तीन कषाय प्रत्यय, ये अगले गुणस्थान की बात हो रही है, तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय नहीं है। तीन वेदों में एक, यहाँ उदय की अपेक्षा चल रही है, हो हास्य रति और अरति शोक इन दो युगलों में से एक युगल, दस योगों में से एक योग, इस प्रकार ये सभी नौ प्रत्यय होते हैं। हमने देखा था ना अभी, यहाँ पर क्या पोजीशन है, अनंतानुबंधी चली गई है इसलिए उसे छोड़कर तीन तीन ही कषाय हो गए। हमने देखा था दो असंयम है, अभी यहाँ पर कितने हो गए, तीन कषाय, एक वेद चार और दो युगल में से दो है? तो तीन एक चार दो छः हो गए, भाई जुगुप्सा को नहीं लेंगे हम। तो यहाँ छः कषाय और एक योग, नौ हो जाएंगे, कम से कम नौ हो जाएंगे। ये नौ क्यों आए खबर पड़ी? असंयम के दो यानी अविरति के दो, फिर कषाय में से कितने निकालना है वो हमने उदयकुट के द्वारा देखा, और योग एक लेना है। इन दो युगलों में से एक युगल, दस युगों में से एक, इस प्रकार ये सभी नौ प्रत्यय होते हैं। एक इंद्रिय से छह कायों की विराधना करता है, अभी मैक्सिमम ले रहे हैं, एक इंद्रिय एट ए टाइम, पांचों इंद्रियों के द्वारा तो उसका उपयोग चलता ही नहीं है, चलता तो कर लेता सबकी, पांच छह तीस, तीस तो हो जाते उसके संयम। तो इंद्रिय संबंधी एक और ये छह मैक्सिमम, इसलिए यहाँ सात हो जाएंगे। और यहाँ भी मैक्सिमम लेना है तो क्या करना, भय जुगुप्सा को ले लेना, छः दो आठ हो जाएगी यहाँ पर, और एक योग हो जाएगा। यहाँ क्या लिखते देखें, इस पर सात असंयम प्रत्यय मिला ना पांचवी लाइन में, अनंतानुबंधी से रहित बारह कषायों में से तीन कषाय प्रत्यय, तीन वेदों में से एक वेद, हास्यरति और अरतिशोक इन दो युगलों में से एक युगल, भय और जुगुप्सा ये दो, दस योगों में से एक योग, इस प्रकार ये सोलह प्रत्यय होते हैं। हमने भी क्या आठ सात पंद्रह और एक सोलह, तो यहाँ तो ये तो नहीं लिखा, एक बार भय जुगुप्सा को नहीं लिया, एक बार लिया उसका कारण क्या है। तो ये हमने पहले सीखा था कि उदय किसी को दोनों का होता है, किसी को एक का होता है, किसी को होता ही नहीं है, फिर भी बंद तो होता ही रहता है। तो ये सोलह यानी तीसरे गुणस्थान में नौ से सोलह तक प्रत्यय होते हैं। इन जघन्य नौ और उत्कृष्ट सोलह प्रत्ययों से सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि जीव दोनों के लिए यही संख्या है। विवक्षित पांच ज्ञानावरण आदि सोलह प्रकृतियों को बांधता है। हाँ, कितने में से, पहले उन्होंने एक योग इतना ही लिखा, नौवे के लिए कितना, दस योगों में से एक योग लिखा था, हाँ अभी तेरह योग में से एक योग लिखना। यहाँ असंयत की डिटेल बात नहीं है, परंतु असंयत के लिए तेरह योग में से एक योग। अब आगे बढ़ते हैं, अब पांचवें गुणस्थान की बात करेंगे। एक इंद्रिय से एक काय की विराधना करता है, इस प्रकार दो असंयम, ये पहले हमने लिखा था वो दो असंयम तो वैसा ही लिखेंगे। अब पांचवें गुणस्थान में यहाँ कषाय कितनी हो जाएगी, दो कषाय चौकड़ी है ना, तो ये दो दो हो जाएगी। वेद रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ, और हास्यरति भी है, यानी दो असंयम लिए, ये छः के बदले यहाँ दो एक तीन दो पांच लेना। भाई जुगुप्सा को मैक्सिमम वाले में लेंगे, और एक योग, कितने में से एक योग होगा, यहाँ योग कितने होते हैं, पांचवा गुणस्थान ना, औदारिक और मनोयोग चार और वचन योग चार, नौ होते हैं। पांचवें गुणस्थान में नौ योग है, नौ में से एक, तो पांच और सात एक आठ हो जाएंगे प्रत्यय। यहाँ पर जघन्य से आठ प्रत्यय और उत्कृष्ट में सात, कौन सा एक कम होगा, बहुत अच्छा। तो दो असंयम में से फिर भी दो असंयम तो मिनिमम था, यहाँ पांच रहेंगे, वहां षट काय लिखा ना, एक इंद्रिय से छह काय लिया था, अब यहाँ एक इंद्रिय से पांच का है, हाँ ये छह हो जाएगा, बहुत अच्छा। और फिर इसमें भय जुगुप्सा मिला दो, सात हो जाएंगे। अब देखेंगे, अब पढ़ेंगे हम। हाँ फिर भी एट ए टाइम एक ही रहेगा, कितने में से एक उसकी संख्या बढ़ेगी। हाँ पांचवा चल रहा है अपना, पांचवा चल रहा है, वो छठे में हम ऐड करेंगे कितने में से। अभी तो नौ योग में से एक योग चल रहा है, अभी पढ़ेंगे। देखो पहले थोड़ा विचार करते ना, भले हम कोई गलती भी करें, मिस्टेक करें, कोई बात नहीं है। हम पहले खाली पढ़ने में कुछ फायदा नहीं अपने को, थोड़ा हम स्वयं डिराइव करें और फिर बढ़ेंगे तो अभी ख्याल आएगा क्या है। देखो अभी पांचवें की बात चल रही, एक इंद्रिय से एक काय की विराधना करता है। इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, अनंतानुबंधी चतुष्टय और अप्रत्याख्यानावरण चतुष्टय से रहित आठ कषायों में से दो कषाय प्रत्यय। ये ख्याल में है दो कषाय प्रत्यय क्यों? तीनों में वेद में से एक वेद, अभी हमने ये उदय का कूट लिखा है ना, इन्हें दिए दो कषाय प्रत्यय, एक वेद, हाँ, और हास्यरति और शोकरति, इन दो युगलों में से एक युगल, और नौ योगों में से एक योग, इस प्रकार आठ प्रत्यय होते हैं। पिनांग भाई कुछ ख्याल में आता है? देखो ये भी जाने, देखो अभी हमने यहाँ उदय के कूट देखे थे, इसके ऊपर देखना, दो कषाय चौकड़ी का उदय है, कितने कर्मों का उदय है उसकी बात चले, पांचवा गुणस्थान है, दो कषायों का उदय है, कौन से दो? प्रत्याख्यानारण संज्वलन, तो उदय एट ए टाइम दो क्रोध का या दो मान का, ये ऑप्शनल है ना, दो 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 या दो क्रोध या मान या माया या लोभ, एट ए टाइम चारों का उदय होता ही नहीं किसी को। तीन वेद है उसमें से किसी एक वेद का उदय है, हास्यरति तो उदय हो रूप होगी या शोकरति, भय जुगुप्सा दोनों का होगा या अकेले भय का, अकेले जुगुप्सा का, या दोनों का भी नहीं। हमें कम से कम देखना है कितने हैं, अभी इसके प्रत्येक में जो एक एक है उसका एडिशन करो, दो एक तीन दो पांच, और यहाँ का जीरो लेना है, हमको कम से कम लेना है, तो ये हमने सेंटर में पांच लिखे कषाय। पहले तो असंयम वाले दो लिखे थे, एक इंद्रिय से एक काय की विराधना, पांच स्थावर में से एक काय की विराधना हो रही है, मान लेते पृथ्वी काय की, तो एक ही काय की विराधना ली, तो वो दो असंयम, पांच कषाय और एक योग, नौ में से एक योग, ये तो जघन्य से कितने प्रत्ययों से बंद हो रहा है उसकी बात चल रही है। अभी अधिक से अधिक किसी के प्रत्यय कितने हैं तो बंद होगा, पांचवें गुणस्थान वाले के अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो उसमें अभी हम यहाँ देखेंगे। यहाँ क्या लिखा देखो, चौथी लाइन में, एक इंद्रिय से पांच कायों की विराधना करता है। पहले षटकायों की विराधना होती थी, अब गुणस्थान पांचवा है, तरस की विराधना यहाँ नहीं है, तो या पृथ्वी का एक, या जल का एक, या अग्नि का एक, या वायु का एक, या वनस्पति का एक की विराधना है, हा? और वो एक इंद्रिय संबंधी है, यानी एक इंद्रिय संबंधी अविरति और ये पांच अविरति मिलकर छह अविरति हुई है, तो उसकी अलग अलग जीवों की अपेक्षा से ग्यारह, परंतु किसी एक समय में एक ही इंद्रिय के द्वारा उसका उपयोग चलेगा, इसलिए उसको एक इंद्रिय संबंधी अविरति, एक समय की बात चल रही है उसके, तो इसलिए यहाँ पर लिए छह असंयम लिए थे हमने मैक्सिमम, एक इंद्रिय संबंधी और पांच काय। अभी इसमें भी कषाय हमको अधिक से अधिक लेना है, अब ये उदय कूट देखते हैं, दो कषाय और एक वेद, ये एक युगल और भय जुगुप्सा दोनों, दो दो चार एक पांच दो सात, वो सात लिए यहाँ पर, और योग तो एक ही होता है, एक एट ए टाइम एक ही योग होता है, तो उत्कृष्ट कितना होगा, सात छह तेरह एक चौदह होगा, और कम से कम कितने देखे थे, पांच दो सात एक आठ देखे थे। हाँ देखो असंयम का पार्ट फिर देखते, हमने देखा था अविरति यानी असंयम बारह प्रकार की होती है, उसमें हाँ अविरति कहेंगे, पांच इंद्रिय और एक मन, ये भी छह हुए, पांच इंद्रियों संबंधी विरति नहीं होना वो अविरति कहेंगे, यानी उन इंद्रियों में इसका उपयोग चल रहा है। पांचवे गुणस्थान वाले की भी बात है यहाँ, हले तो इसमें से एट अ टाइम एक ही इंद्रिय संबंधी उपयोग चलेगा, एक समय की बात चल रही है, फिर पलटे का दूसरे इंद्रिय के द्वारा हो गया, परंतु इसमें से एक अविरति रहेगी एक जीव को एक समय में। अभी काय की विराधना है, पृथ्वी काय है, अग्नि काय है, वायु काय है, जल काय है, वनस्पति काय है और त्रस काय है। तो एक इंद्रिय के द्वारा हो सकता है त्रसों काय की हिंसा हो रही है, कभी हो सकती है, अभी क्या करे, छह की हिंसा हो सकती है, कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, अभी हाँ आप कहते एटम बम डाला कुछ भी अन्य भी कार्य जो हम कर रहे हैं, एटम बम में तो त्रस की भी हिंसा हो जाएगी। हाँ परंतु ये तो ये उदाहरण बता रहे हैं, यानी पृथ्वी काय की भी, अभी कोई खेती कर रहा है तो वहाँ पृथ्वी काय की विराधना हो रही है, जल काय की हो रही है, वहाँ त्रसों की भी हो रही, त्रस भी है ना उसमें, वनस्पति की भी हो रही, ये सब की हो रही उसमें। अभी फिर अग्नि जला के वहाँ भूमि को वो कुछ सेक रहा है, सभी करते तो उसमें भी सबकी हो जाएगी। कोई विशिष्ट कार्य करता है तो उसमें छो कायों की विराधना होती है। अब हम ये अग्नि जलाते हैं, वो कुछ काम करते पकाते हैं या कुछ बुहारी लगाते झाड़ू लगाते,
आपको एटम बम नहीं डालना है,
चलते है भी है,
आपको एटम बम नहीं डालना है, दिवाली में फटाका उड़ाना है, उसमें भी ऐसे ही होता है ना, फटाके जो उड़ाते
देखो
बहुत बड़ा आवाज आवे तो हम भी पंचेंद्रिय जीव भी डर जाते हैं, वो तो एक इंद्रिय वाले, बाकी जो होंगे वो तो किधर, उनका हालत क्या होने वाली पता नहीं, भले उनको कर्ण इंद्रिय नहीं है फिर भी जो वाइब्रेशन होता है ना उसका स्पर्श ज्ञान तो होगा कि नहीं उनको। हम देखते दिन में फटाका उड़े तो कबूतर धुर भाग जाते हैं, तो खुशी से नहीं भागते, डर के मारे जाते हो, वो हिंसा है ना, किसी का मन दुखाना यह भी हिंसा है।
अभी तो हम किसी की हिंसा नहीं कर रहे ना ए वायु का एक चल रहा है, ये पंखा चल रहा है ऊपर अश्विन ने बोलते तो कैसे जीने का हा? तो हिंसा से हम जीते ऐसा नक्की हुआ क्यों सिद्ध भगवान नहीं जी रहे। देखो ये छह काय की एक साथ कैसे होती है उसकी बात है, अभी पांचवे गुणस्थान वाला है उसको ये त्रस वाली तो नहीं है, परंतु कम से कम लेने तो एक इंद्रिय के द्वारा एक किसी काय की विराधना होती है, और अधिक से अधिक किसी जीव के होती तो पांचों की होती है एट अ टाइम। तो इंद्रिय संबंधी यानी एक ये और ये पांच, छह हो गए ना, तो यहाँ हमने उत्कृष्ट में उत्कृष्ट छह लिए थे, मिनिमम वाला दो लिया था, दो में क्या है, एक इंद्रिय के संबंध में इंद्रिय की अविरति यानी इंद्रिय में उसका उपयोग उचल रहा है, पांच इंद्रियों संबंधी किसी न किसी इंद्रियों के विषय में वो उलझा है, उसको जानने में रुक गया है। हो सकता है कर्ण इंद्रिय का विषय हो, स्पर्शन इंद्रिय का हो, चक्षु इंद्रिय का, रसन इंद्रिय का, जो कुछ है, ये तो उसमें नहीं नहीं वो संयम की बात कर रहे हैं, इंद्रिय विजय और संयम मुनियों के होता है। हाँ तो सब उनके अविरति सब चली जाती है, तो उनके इंद्रिय का ज्ञान नहीं होता, ऐसी नहीं है बात, इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा नहीं रहती है।
देखने से क्या पांचों पांच हिंसा होती है, पांचों पांच मैंने शर्ट का एक समझो के
अच्छा चक्षु इंद्रिय से क्या होता है उसमें भी कृतकारिता अनुमोदना वाली जो कुछ होती होगी अभी टीवी देख रहे हैं वो तो देख रहे किसी की, वो तो पैसा लेके वो एक्शन कर रहा है खोटा खोटा, करने वाला तो जानता है ये सब झूठ है, परंतु हम उसमें इतने उलझते हैं, हमको वो सच ही लगता है, और वो हाथ में पिस्तौल लिए बैठा है खाली, और दूसरा आके उसको पीटता है तो कहते हैं अरे पिस्तौल है हाथ में, गोली तो यानी उनको इतना बंद नहीं हो रहा है जितना हमें बंद हो रहा है. वो तो पैसे कमाने के लिए कर रहे थे झूठी झूठी एक्शन. देखो ये कम से कम और अधिक से अधिक ख्याल में आता है असंयम की बात. हा? ये हमारा तो मैक्सिमम पाप तो मन के द्वारा होता है, इसीलिए पंचेंद्रियों को तो इतना उत्कृष्ट बंद होता है और एकेंद्रियों को कुछ नहीं होता है. एकेंद्रियों को मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंद होगा तो एक सागर, और यह संगी पंचेंद्रिय का होगा तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर. ये मन संबंधी बहुत नहीं नहीं देख उसके द्वारा करना है ना उसका उसमें रुक जाना, उस विषय को ग्रहण करने की इच्छा. उसके द्वारा हिंसा करता है ये तो कथन में आया, हिंसा उसकी हो रही है उसी समय वो किसी न किसी इंद्रियम के विषय में उलझा है, उसकी अभिलाषा में उलझा है. अभिलाषा रूप लेना केवल देखने का यानी जानने के रूप में उसको नहीं लगा. नहीं वो तंदुल मत से भी मन के द्वारा कर रहे हैं ऐसा उनका कहना है. उनका कहना है मन से क्यों होता है, देखने से नहीं हो रहा है. अब यहाँ देखते हैं ये मिनिमम मैक्सिमम ख्याल में है ना. अभी हमने 8 वो मिनिमम देखे थे. देखो नीचे से तीसरी लाइन, एक इंद्रिय से 5 कायों की विराधना करता है इस प्रकार 6 असंयम प्रत्यय. ये 5वें गुणस्थान वाले के उत्कृष्ट प्रत्ययों की बात चल रही है अभी. 2 कषाय प्रत्यय कौन से, प्रत्याख्यान और संज्वलन. 1 वेद प्रत्यय, हास्य रति और अरति शोक, इन 2 युगलों में से 1 युगल. भय और जुगुप्सा तथा 9 योगों में से 1 योग. 1 के बाद कॉमा नहीं चाहिए, 1 योग. इस प्रकार ये 14 प्रत्यय हैं. यहाँ 14 लिखना बाकी है ब्रैकेट में, 14 प्रत्यय के बाद में लिखो उसको. इन जघन्य 8 और उत्कृष्ट 14 प्रत्ययों से संयता संयत जीव विवक्षित 5 ज्ञानावरणादि 16 प्रकृतियों को बांधता है. देखो एक्चुअली कितना बांधता है तो हमने बंधे योग्य प्रकृति देखी तो 1, 2, 3, और 4 गुणस्थान में जितनी बंध विच्छित्ति हो गई उसको छोड़कर बाकी सबको यहाँ बांध रहा है. परंतु यहाँ हमारा प्रश्न 16 प्रकृति संबंधी चल रहा है, इसलिए उनको बांधने वाला 5वें गुणस्थान वाला कितने प्रत्ययों से बांधता है उसकी बात की. वो अन्य प्रकृतियों को नहीं बांधता वो बात यहाँ नहीं चल रही है. यथा योग्य बंधने वाली प्रकृति वहाँ भी बंध रही है और उनके लिए भी कारणभूत यही प्रत्यय है. नहीं 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 परिणामों के ने वो बंध की भी वो स्थिति की बात आप पूछ रहे क्या. स्थिति में तो हमने देखा था ना उसके तो कषाय की तीव्रता मंदता वो है. अभी यहाँ प्रत्याख्यान आवरण अप्रत्याख्यान 2 कषाय है उसमें भी तीव्रता मंदता से अनेक भेद है तो उसके अनुसार स्थिति और अनुभाग पड़ेगा. मिनिमम हाँ कोई कम संख्या से बांधता है कोई ज्यादा से बांधता है उसमें ऐसे आपका प्रश्न है. नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है. कम संख्या वाला कम ही बांधता है ऐसी बात नहीं है. जैसे अभी हमने भय जुगुप्सा देखी, भय जुगुप्सा का उदय ही नहीं है तो उदय नहीं वो कम बांधेगा. तो अभी 16 प्रकृतियों की बात छोड़िए, भय जुगुप्सा का उदय नहीं है वो भय जुगुप्सा का भी बांधेगा क्योंकि भय जुगुप्सा निरंतर बंधने वाली प्रकृति है. वो ध्रुव यानी ध्रुवबंदी देखी हमने उसको तो अनादि से बंधी चली आ जाएगी और वो 8वें गुणस्थान तक बंधेगी भले उसका उदय नहीं है तो भी. यानी उदय कितना है उस पर वो आगामी बंध की बात नहीं है. वो ध्रुव बंदी है, कितने वो क्या है, उसके साथ उसका रिलेशन है। ये जो हमने अभी देखी है, ज्ञानावरण है और चार दर्शनावरण है और अंतराय है,
16 प्रकृतियों की बात चल रही है।
ये तो ध्रुव बंदी है ना, ज्ञानावर दर्शन अंतराय, तो ये तो अनादि से बनती चली आ रही है। तो जिसको कम होगा, जिसको अधिक होगा, उससे कुछ नहीं है उसका।
उनमें प्रत्येक कितने लगते हैं?
तीव्रता से उसका अनुभाग बन सकता है अधिक। तीव्रता से उसका अनुभाग में वेरिएशन होगा, वो विषय यहाँ नहीं। यहाँ तो कितने प्रत्ययों से बनता है उसकी बात है। वो अनुभाग का बंध और स्थिति का बंध वो आगे चलकर देखेंगे। अब ये बंधने वाले हेतु कौन कौन से है, उतनी ही बात अभी यहाँ लेनी है अपने को। एट ए टाइम थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो पचेगा अपने को। नहीं, क्या होता है, आपका तो थोड़ा बहुत अभ्यास हुआ है, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाता है ना, इसलिए वो विषय यहाँ नहीं। क्यों नहीं ले, एट ए टाइम इसको ही समझते समझते जाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा घूंढते घूंढते चले जाएंगे। ये आसान लगेगा, फिर आगे चलकर जब वो विषय आएगा तब उसको ले लेंगे। यानी ऐसे नहीं कि आप कोई प्रश्न नहीं पूछना, ये बात नहीं है। हाँ, तो ये संहिता संयत की बात हो गई। अब 16 ही प्रकृतियों की बात, ये तो बंधने वाली ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। ये तो हमेशा ही बंधी, अनादि से बनती चली आ जाएगी और वो 10वें गुणस्थान के अंत तक बंधेगी ही। ज्ञानावरण दर्शन अंतराय की बात है। यशस कीर्ति और उच्च गोत्र जो है उसमें जब तक उसकी अपोजिट वाले की बंधे विच्छित नहीं थी तब तक तो ऑप्शनल थे। जैसे अयशस कीर्ति जब तक बनती थी छठे तक, तब तक यशस कीर्ति या अयशस कीर्ति बनती थी। और उच्च गोत्र निज गोत्र में से निज गोत्र तो दूसरे गुणस्थान तक बनता था, तो वहां तक या उच्च गोत्र बंधेगा या नीच गोत्र, ऑप्शनल है। उसके बाद तो वो निरंतर वही बंधेगा। परंतु ज्ञानावरण अंतराय दर्शनी है, दर्शनावरण जो है वो तो अनादि से बनती ही है। ये यहाँ तो चार की बात की, क्योंकि 10वें के अंत तक चार का बंध है दर्शनावरण का। उसमें से निद्रा संबंधी बंध 3 का होता है, दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति, और निद्रा प्रचलात का 8वें के पहले भाग में होता है। इसलिए यहाँ 9 दर्शनावरण को नहीं लेते हुए 4 की बात है, क्योंकि 10वें के अंत तक बंधने वाली, वहाँ विच्छित्ति होने वाली प्रकृतियों के सबसे पहले लिया है। और इन 16 की ही बात हर जगह उठा रहे हैं। अब छठे की बात करेंगे। अब देखो पिनांग, अभी आप मुझे बताना, बाकी कोई नहीं बोले। ये हमने कम से कम 2 असंयम लिए थे अभी तक, अब यहाँ कितने असंयम रखना?
छठे में।
हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो यहाँ 0 हो गए, अभी 2 ही प्रत्यय चले गए, एक कषाय वाला और एक योग वाला। हाँ, बहुत अच्छा। तो अभी हम देखते हैं कषाय कितने हो गए। अभी तक हमने 2 कषाय चौकड़ी रखी थी, अभी एक संजोलन कषाय वाली ही रहेगी। अभी कषाय कितने हैं? एक संजोलन कषाय, एक वेद, हास्यरति या शोकरति, मिनिमम लेना है हमको तो। 1, 1, 2 और 2, 4 ही हो गए। वह जुगुप्सा को अभी हम नहीं लेंगे, जघन्य हमको निकालना है तब, तो ये 4 हो गए। बरोबर, 8वें तक है उसका उदय, 8वें तक है हास्य रति शो, वो 6, 6, 8वें गुणस्थान तक उदय है। तो कषाय में 4 आ जाएंगे। और योग कितने योग में से एक योग लेना? अभी 5वें गुणस्थान में हमने 9 देखे थे, दो बड़े आहारक और आहारक मिश्र का योग, परंतु होगा एट ए टाइम एक ही योग, तो उसमें से एक लेना इसमें। और अधिक से अधिक लेना है तो कितने लेने पड़ेंगे? हाँ, भय जुगुप्सा दोनों को लेंगे, तो दो बढ़ेंगे यहाँ, चार के बदले छह हो जाएगी और योग तो एक ही रहेगा। देखो अभी यहाँ से पढ़ेंगे, चार संज्वलनों में से एक कषाय प्रत्यय, तीन वेदों में से एक वेद, हास्य रति और अरति शोक इन दो युगलों में से एक युगल, तथा ये तो कम से कम बता रहे, नौ योगों में से एक योग, इस प्रकार जगन्य से हाँ, परंतु वो उन्होंने ग्यारह में से एक आगे लिखा है क्या? हाँ, ग्यारह में से एक लिखा ही नहीं उन्होंने। हाँ, अच्छा, सब एक साथ लिए, प्रमत्त अप्रमत्त और अपूर्वकरण। ये तीनों एक साथ लिए ना, इसलिए नौ योग लिखे, परंतु छठे के लिए तेरह में ग्यारह में से एक समझना। योग तो एट अ टाइम एक ही होगा। इस प्रकार जघन्य से पांच हमने देखे थे, देखो चार और एक, एक संज्वलन वाला एक, एक वेद हास्यरति वाला युगल, ये जघन्य से चार और एक योग पांच हो गए, पांच प्रत्यय मिनिमम, और अधिक से अधिक एक कषाय प्रत्यय, एक वेद प्रत्यय, हास्यरति और अरति शोक इन दो युगलों में से एक युगल, भय जुगुप्सा, ये दो बढ़ गए ना, दोनों का ही जिसको उदय है, तथा नौ योगों में से एक योग, इस प्रकार ये सात उत्कृष्ट प्रत्यय हैं। इस प्रकार जघन्य पांच और उत्कृष्ट सात प्रत्ययों से प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत और अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवक्षित पांच ज्ञानावरण आदि सोलह प्रकृतियों को बांधता है। अब आगे इस छह सात आठ हो गए ना, संज्वलन करना, संज्वलन हुआ, संज्वलन देखो, एक संज्वलन कषाय, एक योग, इस प्रकार ये जघन्य से दो प्रत्यय तथा अभी क्या, ये कहाँ आए हम, नौवे में आए ना, नौवे में इसमें से क्या निकालना है? देखो वेद अभी तो रखेंगे, हास्यरति शोकरति भयजुगुप्सा ये सब चले गए, तो ये ऊपर के सब चले गए, एक कषाय और एक योग इतना ही रहेंगे, नौवे गुणस्थान के स्टार्टिंग की पोजीशन है, वेद का भी उदय, परंतु हास्यरति अरति शोक भयजुगुप्सा का उदय नहीं है। हाँ, तो एक एक कषाय और एक योग इतना रहेंगे, यानी ये दो कषाय हो जाएंगे ना, दो, एक वेद और एक कषाय मिलके कषाय वाले पार्टी में दो हो गए, और योग एक रहेगा। यहाँ देखो, एक संज्वलन कषाय और एक योग, इस प्रकार ये जघन्य से दो प्रत्यय। जघन्य क्यों कहा? क्योंकि जब अवेदी हो जाएगा, नौवे गुणस्थान की इन जनरल बात है, उसके स्टार्टिंग में एक योग और एक एक वेद और एक कषाय, तो दो हो जाएंगे, और इन एडिशन एक योग भी हो जाएगा। वेद जब नहीं गया है, स्टार्टिंग के दो है ना, नौवे के स्टार्टिंग में दो है, संज्वलन कषाय में से एक और एक योग, एक वेद, यहाँ जघन्य की बात कर रहे, इसलिए उसको वेद मुख नहीं लिया, योग भी लेंगे। देखो एक एक पार्टी हमारी कषाय वाली है और एक है योग, दो प्रत्यय, मूल प्रत्यय दो है, कषाय वाला और योग वाला, योग तो दोनों में ही रहेगा, जघन्य उत्कृष्ट में, वो तो एक ही होगा किसी के। अब ये कषाय वाली जो मूल प्रत्यय है, उसमें या तो अकेला संज्वलन कोई एक होगा, क्रोध मान माया लोभ में से, तो एक प्लस एक हो जाएगा, ये कभी होगा अवेद अपगत वेदी में ही ये होगा, परंतु नौवे गुणस्थान के स्टार्टिंग में क्या पोजीशन है, एक वेद है और एक कषाय है, यानी 2+1 होगा। तो जघन्य से 2 और उत्कृष्ट से 3, तो 2 किसके लिए? अपगत वेदी के लिए। वो कथन उन्होंने पहले कर दिया क्योंकि 9वें गुणस्थान की बात चल रही, मिनिमम की बात। तो जघन्य से 2 प्रत्यय किसके लिए? अपगत वेदी के लिए। और उत्कृष्ट से वेद के साथ 3, यानी जो सवेद भाग है उसमें 3। इस प्रकार जघन्य 2 और उत्कृष्ट 3 प्रत्ययों से अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवक्षित 5 ज्ञानावरणादि 16 प्रकृतियों को बांधता है। अब 10वें में क्या पोजीशन होगी? एक है सूक्ष्म लोभ और एक है योग। तो लोभ कषाय 1 और एक योग प्रत्यय। इस प्रकार जघन्य उत्कृष्ट से भी 2 प्रत्ययों से सूक्ष्म सांप्रायिक जीव विवक्षित 5 ज्ञानावरणादि 16 प्रकृतियों को बांधता है। इससे ऊपर उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और सहयोगी केवली केवल एक योग से ही एक साता वेदनीय प्रकृति को ही, यानी प्रत्यय भी एक है और बंधने वाली प्रकृति भी एक साता वेदनीय ही है, बांधते हैं। यहाँ उपसंहार गाथा। अब ये संख्या यहाँ गिनाएंगे, जघन्य और उत्कृष्ट। वो किस तरह से जघन्य उत्कृष्ट घटित होती है वो अभी हमने देखे, गाथा पढ़ेंगे। 10-18 17-16 चौन्नम तु 18-14 प्रणय 17-22 च। ऊपर वो 10 है, वो पढ़ते समय दिखा नहीं मुझे, वसयम नहीं, 10। हमने देखा ना 10-18 और 10-17 दूसरे में। मिथ्यात्व गुणस्थान में 10 व 18, यानी 10 ये जघन्य से और 18 ये उत्कृष्ट से। 10 में हमने देखा वो अनंतानुबंधी के विसंयोजन वाले को था और भय जुगुप्सा से रहित वाले को। सासाधन में 10 व 17 2 गुणस्थानों में अर्थात मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि में 9 व 16, ऊपर लिखा ना 9 व 16 च दोन्नम तु, तीसरे और चौथे दोनों के लिए। संयता संयत में 8 और 14 18-14 प्रणयम। प्रमत्त संयतादिक 3 में ना प्रणयम वो 5 है, 5 व 7 प्रणयम 17। अनिवृत्तिकरण में 2 व 3 दूती और सूक्ष्म सांप्राय में 2 यानी दू तथा उपशांत कषाय क्षीण कषाय एवं सहयोग केवली गुणस्थानों में मात्र 1 यानी एयमेयम। इस प्रकार एक जीव के एक समय में जघन्य व उत्कृष्ट बंध प्रत्यय पाए जाते हैं। ये 16 की बात या नहीं हुई, बंध प्रत्ययों की बात है। उस गुणस्थान में जो कुछ बंध होता है वो उन प्रत्ययों से ही होता है। ये नाना जीवन की अपेक्षा हमने देखे थे कि मिथ्यात्व गुणस्थान में कितने हैं, कितने देखे कल प्रत्यय 55 और एक जीव की अपेक्षा मिनिमम 10 और उत्कृष्ट 18। ये बात ख्याल में आई ना। ये नाना जीवन की अपेक्षा 5 प्रकार के मिथ्यात्व 12 प्रकार की अवृत्ति जो देखी थी, परंतु एक जीव की एट ए टाइम एक समय में कितनी होगी उसकी यहाँ बात है। अब आगे जो प्रश्न हमने देखे थे कितने, 11 पेज पर थे, 9 पेज पर थे, 8 पृष्ठ पर। देखो हाँ 12 नंबर का प्रश्न। अभी हमने जो देखे थे क्या सनिमित्तक बंध होता है, क्या अनिमित्तक बंध होता है, तो सनिमित्तक होता है और उसका निमित्त क्या है तो प्रत्यय, तो वो कौन से गुण स्थान में कितने होते हैं उसकी बात की हमने। उसके आगे वाला प्रश्न, क्या गति संयुक्त बंध होता है या क्या गति संयोग से रहित बंध होता है, ये बात अभी बताएंगे। देखो क्या गति है, कौन सी गति संयुक्त, 28 पृष्ठ पर आए हम दोबारा, कौन सी गति से संयुक्त बंध के हैं, इस पृच्छा का 14 जीव समासों से संबंध उत्तर कहते हैं, यानी 14 गुणस्थान संबंधी उसका क्या गति का संबंध कौन सा है उसकी बात यहाँ बताएंगे। क्योंकि अभी हम इन 16 प्रकृतियों की यदि बात करते हैं तो 16 प्रकृतियों का बंध पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान, सॉरी 10वें गुणस्थान तक है, बराबर है ना। तो उसमें से चार चौथे गुणस्थान तक तो चारों गतियाँ हैं, पांचवें गुणस्थान वाले के तो तिरंज गति और मनुष्य गति है, और छठे से दसवें तक तो एकमात्र मनुष्य गति है। परंतु यहाँ दो अपेक्षा से अलग अलग बात की, कौन से गति वाले बांधते हैं और कौन से गति के साथ इसका बंध होता है। इसका अर्थ क्या, मान लेते हैं कोई नरक गति का बंध कर रहा है तो क्या नरक गति के बंध करने वाले को ये प्रकृतियां बंधेगी कि नहीं बंधेगी। हाँ उच्च गोत्र यश की नहीं बंधेगी, परंतु ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय तो बंधेगी। इस तरह से कौन से गति के साथ बनती है इसका उत्तर होगा, और कौन से गति संयुक्त वाले के ने कौन से गति वाला जी उसका बंध कर रहा है, उसके दोनों के उत्तर अलग अलग आएंगे। हाँ ये अभी तो 16 पे घटाएंगे, या उसके उदाहरण के लिए अन्य भी बताएंगे, उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कौन सी भी आप कोई विवक्षित प्रकृति का नाम ले लो तो वो कौन से गति वाला बांधता है और कौन से गति के साथ उसका बंध कर रहा है उसको देखेंगे हम। जैसे उद्योत नाम कर्म है, अभी सुनो, उद्योत नाम कर्म है कौन से गति के साथ बंधेगा, जो तिर्यंच गति का बंध कर रहा है उसके साथ उसका बंध हो सकता है, करेगा ये गारंटी नहीं, मगर उसका बंध किसके साथ होगा, किस गति संयुक्त उसका बंध होगा, तिर्यंच गति संयुक्त होगा। और कौन से गति वाला उसका बंध करेगा, तो चारों गति में से कोई जो कोई तिर्यंच गति का बंध कर रहा है, ये ख्याल है दोनों में क्या डिफरेंस है, बांधने वाला कौन है, चारों गति का जीव है, परंतु वो कौन से गति का बंध कर रहा है, उद्योत प्रकृति कौन से गति के साथ बंध रही है, तो तिर्यंच गति के साथ बंध रही है। तीर्थंकर प्रकृति कौन से गति के साथ बंधेगी, दोनों होगी, देव गति के साथ भी और मनुष्य गति के साथ, अन्य गति के साथ बंधेगी कि नहीं बंधेगी, नरक। हाँ बोलो कैसे, सुनो सुनो अभी। तो नरक गति बांध रहा है उस समय तीर्थंकर प्रकृति को बांध रहा है क्या। हमारा प्रश्न क्या था, कौन से गति संयुक्त बंध हो रहा है, जो नरक गति को बांधता है जीव वो पहले ही गुणस्थान वाला है, पहले गुणस्थान वाला कभी तीर्थंकर प्रकृति को बांध ही नहीं। आपने प्रश्न नहीं समझा और आपका उत्तर भी गलत आया है, कैसे वो समझो, भले वो नरक में जाने वाला जीव है परंतु वो नरक गति का बंध नहीं कर रहा है जब तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, ख्याल है ना। देखो नरकायु का बंध हो गया तीर्थंकर, अभी श्रेणिक राजा की बात करते हैं, पहले श्रेणिक राजा ने नरकायु का बंध किया, कब, मिथ्या तो गुणस्थान में, बाद में सम्यक दृष्टि हुआ, शायिक सम्यक दृष्टि भी हुआ, अब वो कौन सी गति बांध रहा है, देव गति बांध रहा है, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है। नरक गति की काम हम, श्रेणिक राजा की बात चल रही है अभी, अभी आप सुनो बराबर, अभी वो मनुष्य है, मनुष्य समय दृष्टि कौन सी गति बांधेगा, देव गति और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है। बराबर, शायिक समय दृश्य यानी मिथ्यात्व में जाने का सवाल नहीं है। फिर से वो पहले नरक में गया, तो पहले नरक का नारकी है अभी वर्तमान में वो, तो अभी क्या पोजिशन है उनकी, मनुष्य गति बांध रहे हैं हाँ, और उसके साथ तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होगा। हाँ वो गति बंधेगी ही नहीं आगे, चौथे वाले को नरक गति का बंध है ही नहीं है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो सम्यक दृष्टि करेगा। ये मैं तो एग्जाम्पल में देने को आई, तो ये तो गड़बड़ी हो गई उसमें, यानी हमको तो उसके आधार से हमें किस गति के साथ बंद होता है इसको समझना है। अभी हमने पहले उद्योत का एग्जाम्पल लेके देखा था, ऐसे अलग अलग जो है उसकी बात आएगी, अभी हम देखेंगे इसमें से। देखो इसमें पढ़ते कौन से गति से संयुक्त बंद के है, किंग गई संयुक्तो, किस गति से संयुक्त बंध है, ऐसा कुछ वो अलग बताया है। कल हमने जो पढ़ा था उसमें गति संयुक्त दो पृष्ठ पर
गति संयुक्त बंध होता है,
कौन सी गतियों का
क्या अलग छोड़ के गति संयुक्त बंध होता है, क्या गति से और क्या गति गति से संयुक्त,
कौन सी गति से संयुक्त
बंधते है,
बंधते है चाहिए, ये प्रकृतियां बनते है, किंग गई संयुक्तो, कौन गति के साथ बांधता है या बंधता है। ठीक है, समझ में है ना उसका, अपनी भाषा में समझ लेना, यानी जब ये बंद हो रहा है तो कौन सी गति उसके साथ बंध रही है, कौन से गति के साथ इसका बंद हो रहा है, इस तरह से अर्थ है उसका। इस पृच्छा का 14 जीव समासों से संबंध उत्तर कहते हैं, वह इस प्रकार है। मिथ्या दृष्टि जीव चारों गतियों से संयुक्त उक्त प्रकृतियों को बांधता है, को करना प्रकृतियों का हुआ, तो बांधता है बंध के बारे में बांधता है। विशेष इतना है कि वही इस प्रकार है, वहां से पढ़ते हैं दूसरी लाइन। मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियों से संयुक्त उक्त प्रकृतियों को बांधता है, उक्त यानी हमने 16 की बात चले, तो 16 में से ज्ञानावरण है, 4 दर्शनावरण है और अंतराय है, वो तो चारों ही गति के साथ उनका बंध होगा, वो तो निश्चित है, क्योंकि अनादि से बनती चली आ रही है और अनादि से चारों गति का ही बंध हो रहा है। परंतु ये नरक गति जो बांधता है उसको यश कीर्ति का बंध नहीं होता, और यश का ही होगा निश्चित। हाँ तो उसकी बात विशेष इतना ने कहा डिफरेंस है उसको बता रहे। उच्च गोत्र को नरक गति और तिर्यक गति को छोड़कर शेष गतियों से संयुक्त बांधता है, ये उच्च गोत्र की बात पहले बता दी होना है, यानी जो तिर्यक गति है उसके साथ उसके नीच गोत्र का ही बंध होता है, नरक गति के साथ भी नीच गोत्र का बंध होता है। यश कीर्ति को नरक गति को छोड़कर 3 गतियों से संयुक्त होकर बांधता है, ये ख्याल में आए। देखो पहले में पहले बताया 16 प्रकृतियों में से बात चल रही है, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, कौन से गति के संयुक्त साथ उसका बंध होता है, तो जो कोई गति बांधे ये तो बंधेगी ही। अब कोई मनुष्य गति बांध रहा है तो वे उच्च गोत्र और वो यश कीर्ति बांध सकता है, परंतु जो नरक गति का बंध कर रहा है तो नरक गति के साथ उसके नीच गोत्र ही बंधेगा और यश कीर्ति ही बंधेगी। जो तिर्यंच गति बांध रहा है उसके साथ नीच गोत्र ही बंधेगा, यश अय में से कोई भी बन सकती है। देवगति और मनुष्य गति बांध रहा है तो उसमें यह सबका बंध हो सकता है। देखो हमने जो देखा था पहले में पहले उसको ध्रुव बंदी कहा था और बाद में निरंतर बंदी कब कहा था? यश कीर्ति को निरंतर बंदी कब कहते हैं? अयश कीर्ति की जहाँ से विच्छित्ति होती है वहाँ से। अयश कीर्ति के बंदे की विच्छित्ति कहाँ होती है? छठे में। तो सातवें से लेकर ऊपर तो वो तो निरंतर बंदी है, उसके पहले शांत रहने ऑप्शनल है, ख्याल है ना? हाँ, अब अकेले हम ऐसा कहेंगे वो तो यश कीर्ति या अयश कीर्ति, यानी नाम गोत्र नाम कर्म तो बनता आया है, दोनों में से कोई ना कोई तो बनती ही रहती है हमेशा, बंदेगी नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ। अब यहाँ देखते, ये तो हमने अभी रूल पढ़ा। टाइम इज अप। अच्छा बताना ऐसा। हाँ, जावाणी के ज्ञान ते